एहेस्केल अध्याय 32। एहेस्केल अध्याय 32 में फिरौन के दुखद अंत के लिए एहेस्केल विलाप करता है। विलाप करना अर्थात रोना या चिल्लाना। एहेस्केल अध्याय 32 पद 1। 12वें वर्ष अर्थात पिछली भविष्यवाणी से 18 महीने बाद। एहेस्केल अध्याय 32 पद 1 और 2। 12वें वर्ष के 12वें महीने के पहले दिन को यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, मिस्र के राजा फिरौन के विषय विलाप का गीत बनाकर उसको सुना। जाति जाति में तेरी उपमा जवान सिम से दी गई थी। वेल एक गलत अनुवाद है। आप सच में एक मगरमच्छ के समान हैं। एहेस्केल अध्याय 32 पद 2। परंतु तू समुद्र के मगरमच्छ के समान है। तू अपनी नदियों में टूट पड़ा और उनके जल को पांव से मत कर गंदला कर दिया। मगरमच्छ या अजगर के समान है। एहेस्केल अध्याय 32 पद 3। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं बहुत सी जातियों की सभा के द्वारा तुझ पर अपना जाल फैलाऊंगा। तूने मगरमच्छ की भांति पानी तो गंदा किया है और उथल पुथल की है, परंतु मैं जाल डालूंगा। एहेस्केल अध्याय 32 पद 3 से लेकर 7 तक। मैं बहुत सी जातियों की सभा के द्वारा तुझ पर अपना जाल फैलाऊंगा और वे तुझे मेरे महाजाल में खींच लेंगे। तब मैं तुझे भूमि पर छोड़ूंगा और मैदान में फेंक कर आकाश के सब पक्षियों को तुझ पर बैठाऊंगा और तेरे मांस से सारी पृथ्वी के जीव जंतुओं को तृप्त करूंगा। मैं तेरे मांस को पहाड़ों पर रखूंगा और तराइयों को तेरी ऊंचाई से भर दूंगा, और जिस देश में तू तैरता है उसको पहाड़ों तक मैं तेरे लहू से सींचूंगा और उसके नाले तुझसे भर जाएंगे। जिस समय मैं तुझे मिटाने लगूं, उस समय मैं आकाश को ढांपूंगा और तारों को धुंधला कर दूंगा। मैं सूर्य को बादल से छिपाऊंगा और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा। अब परमेश्वर कहता है कि जिस दिन वो मिस्र का नाश करेगा उस दिन प्रकृति कैसी होगी। आकाश ढंक जाएगा, सितारे धुंधले हो जाएंगे, सूरज को बादल ढक देंगे तथा चंद्रमा उजियाला ना देगा। इससे अंतिम दिनों में महाक्लेश के समय की भविष्यवाणी का स्मरण होता है कि सूरज अंधियारा हो जाएगा और चांद रक्त रंजित हो जाएगा और सितारों की चमक समाप्त हो जाएगी। यीशु ने मत्ती 24 में यही लिखा है कि महाक्लेश के दिनों में ऐसी प्राकृतिक विपदाएं आएंगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भी यही लिखा है। इस प्रकार हम इस भविष्यवाणी को भी 2 बार पूरी होती देखेंगे। एक पूर्ति मिस्र के होगी जब नेबुकदनेज़र उसे जीत लेगा तथा दूसरी महाक्लेश के समय जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी की न्याय करेगा। ये तो मानी हुई बात है कि इतिहास अपनी घटनाओं को दोहराता है। एहेस्केल अध्याय 32 पद 8 से लेकर 15 तक। आकाश में जितनी प्रकाशमान ज्योतियां हैं उन सबको मैं तेरे कारण धुंधला कर दूंगा और तेरे देश में अंधकार कर दूंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। जब मैं तेरे विनाश का समाचार जाति जाति में और तेरे अनजाने देशों से फैलाऊंगा, तब बड़े बड़े देश के लोगों के मन रिस उपजाऊंगा। मैं बहुत सी जातियों को तेरे कारण विस्मित कर दूंगा और जब मैं उनके राजाओं के सामने अपनी तलवार भेजूंगा, तब तेरे कारण उनके रोए खड़े हो जाएंगे और तेरे गिरने के दिन वे अपने अपने प्राण के लिए कांपते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, बाबुल के राजा की तलवार तुझ पर चलेगी, मैं तेरी भीड़ को ऐसे शूर वीरों की तलवारों के द्वारा गिराऊंगा जो सब जातियों में भयानक है। वे मिस्र के घमंड को तोड़ेंगे और उसकी सारी भीड़ का सत्यानाश होगा। मैं उसके सब पशुओं को उसके बहुतेरे जलाशयों के तीर पर से नाश करूंगा, और भविष्य में वे ना तो मनुष्य के पाँव से और ना पशुओं के खुरों से गंदले किए जाएंगे। तब मैं उनका जल निर्मल कर दूंगा और उनकी नदियां तेल की नाई बहेगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। जब मैं मिस्र देश को उजाड़ दूंगा और जिससे वो भरपूर है उससे छूचा कर दूंगा, और जब मैं उसके सब रहने वालों को मारूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर हर एक भविष्यवाणी में यही कह रहा है कि वे जानेंगे यहोवा ही परमेश्वर है, क्योंकि उसका कहा पूरा होकर रहेगा। भविष्यवाणी या किसी घटना का पहले से बता देना इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ने कहा है। यीशु ने भी कहा था, मैंने इन घटनाओं के होने से पहले कह दिया है कि जब ऐसा हो तो तुम विश्वास करो। इस प्रकार हमारे धर्मशास्त्र का एक सुदृढ़ पक्ष भविष्यवाणियां तथा उनकी पूर्ति है। यही कारण है कि भविष्यवाणियों को कहते समय यहोवा कहता है कि वे जानेंगे मैं ही परमेश्वर हूं। एहेस्केल के अग्रिम अध्यायों में हम देखेंगे कि वो रूस और उसके मित्र राष्ट्र, जिनमें लिबिया, इथियोपिया, ईरान, इराक आदि सबकी विशाल सेना द्वारा इसराइल पर आक्रमण और उनकी पराजय के विषय भी कहता है, तब पृथ्वी की सब जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूं। मैं पृथ्वी की सब जातियों में पवित्र माना जाऊंगा। मैं एक बार एक धनवान यहूदी मित्र से बाइबल और प्रभु के बारे में बात कर रहा था। तब मैंने उससे पूछा कि विश्वासी होने के बारे में उसका क्या विचार है। उसका एक ही प्रश्न था, जब मेरे माता पिता को जहरीली गैस के कक्ष में बंद करके नाज़ियों ने मारा था तब परमेश्वर कहाँ था। मैंने पूछा, विश्वास लाने में आपका क्या जाएगा। देखिए, परमेश्वर कहता है वो इसराइल को फिर से एक राष्ट्र बनाएगा और आज वो एक स्वतंत्र राष्ट्र है। क्या इससे आपको कोई प्रेरणा नहीं मिलती। उसने कहा, नहीं, ये तो प्रत्यक्ष है कि ये आरंभ से ही हमारे मन में बसा हुआ है और एक दिन वो राष्ट्र बनकर ही रहेगा। हम उसे लेकर ही मानेंगे, हम लोग कठोर जन हैं। मैंने कहा, लिखा है कि जब इसराइल एक राष्ट्र होगा तब वे समस्त जातियों के लिए ठोकर का पत्थर होगा और जो उनसे टकराएगा टूट जाएगा। मैं 1967 के युद्ध के बाद उससे बात कर रहा था। मैंने कहा, देखिए, इसराइल ने जॉर्डन, मिस्र और सीरिया तीनों से एक साथ टक्कर ली और तीनों को हराया। उन्होंने सीनाई, पश्चिमी तट और गोलान ऊंचाइयों को अपने अधिकार में कर लिया। क्या इसे देखकर आपको विश्वास नहीं होता। उसने कहा, नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि हम कठोर लोग हैं। मैंने कहा, बाइबल में लिखा है कि रूस इसराइल पर आक्रमण करेगा और उन्हें नाश करने के लिए अपने मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के साथ आएगा, परंतु वो पराजित होगा। उसने कहा, जब ऐसा होगा मैं एक विश्वासी बन जाऊंगा। मैंने कहा, पॉल, तुम आने वाले महाक्लेश से बचने के लिए देर कर दोगे। ये सब आगे के अध्यायों में देखने को मिलेगा, इसराइल की पुनर्रचना तथा अंतिम दिनों की घटनाएं। अब पद 17 में एक नई भविष्यवाणी है, फिरौन के लिए विलाप का अंत हो गया है। एहेस्केल अध्याय 32 पद 16 और 17। लोगों के विलाप करने के लिए विलाप का गीत यही है, जाति जाति की स्त्रियां इसे गाएंगी। मिस्र और उसकी सारी भीड़ के विषय में यही विलाप गीत गाएंगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। फिर 12वें वर्ष के पहले महीने के 15वें दिन को यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। ये भविष्यवाणी महीने के पहले दिन उसे मिली थी। 15 दिन बाद परमेश्वर यहोवा ने उसे मिस्र के लिए एक और संदेश दिया। एहेस्केल अध्याय 33 पद 18 से लेकर 22 तक। हे मनुष्य के संतान, मिस्र की भीड़ के लिए हाय हाय कर और उसको प्रतापी जातियों की बेटियों समेत कब्र में गड़े हुओं के पास अधोलोक में उतर। तू किससे मनोहर है, तू उतर कर खतनाहीनों के संग पड़ा रहा। वे तलवार से मरे हुओं के बीच गिरेंगे, उनके लिए तलवार ही ठहराई गई है। सो मिस्र को उसकी सारी भीड़ समेत घसीट ले जाओ, सामर्थी शूरवीर उससे और उसके सहायकों से अधोलोक में बातें करेंगे। वे खतनाहीन लोग वहां तलवार से मरे पड़े हैं, अपनी सारी सभा समेत अशूर भी वहां है। उसकी कब्रें उसके चारों ओर है, सबके सब तलवार से मारे गए हैं। मिस्र पराजित होकर उसी नरक में जाएगा जहां अशूरों का नाश हुआ है। एहेस्केल अध्याय 33 पद 23 और 24। उसकी कब्रें गड्ढे के कोनों में बनी हुई है और उसकी कब्र के चारों ओर उसकी सभा है। वे सब के सब जो जीवन लोक में भय उपजाते थे अब तलवार से मरे पड़े हैं। वहां एलाम है और उसकी कब्र की चारों ओर उसकी सारी भीड़ है। वे सब के सब तलवार से मारे गए हैं। वे खतनाहीन अधोलोक में उतर गए हैं। वे जीवन लोक में भय उपजाते हैं, परंतु अब कब्र में और गड़े हुओं के संग उनके मुंह पर भी स्याही छाई हुई है। एहेस्केल अध्याय 32 पद 25। उसकी सारी भीड़ समेत उसे मारे हुओं के बीच सेज मिली, उसकी कब्रें उसी के चारों ओर हैं। मिस्र भी, मेशक और तूबल उत्तरी राष्ट्र तथा पद 29 में एदोम और उनके प्रधानों के साथ कब्र में चला जाएगा, और पद 30 में सिदोनी भी। एहेस्केल अध्याय 32 पद 31 और 32। इन्हें देखकर फिरौन भी अपनी सारी भीड़ के विषय में शांति पाएगा। हां, फिरौन और उसकी सारी सेना जो तलवार से मारी गई है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने उसके कारण जीवन लोक में भय उपजाया था, इसलिए वो सारी भीड़ समेत तलवार से और मरे हुओं के सहित खतनाहीनों के बीच लिटाया जाएगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है।